पुराना घर, दरवाजे पर वही कड़वा शांत तूफान। दरवाजे पर खड़ी उस औरत की आंखें विश्वनाथ के चेहरे पर ऐसे जमी थीं जैसे उसने कई सालों का गुस्सा यहीं इसी पल के लिए बचाकर रखा हो। श्यामली को उसकी आंखों में नफरत से ज्यादा एक अजीब सा दर्द दिखा, लेकिन वो दर्द भी इतना कड़वा था कि जैसे दुनिया ने उसे सिर्फ जख्म देना ही सिखाया हो। उसने तिरछी नज़र से श्यामली को देखा, फिर वापस विश्वनाथ पर टिक गई। आप क्या लेने आए हैं आप? शब्द पत्थर की तरह गिरे। विश्वनाथ शांत खड़ा रहा, उसकी आंखें धीमी थीं लेकिन अंदर तूफान छुपा था। औरत ने आगे कहा, आवाज उबलते हुए पानी जैसी, इतने बड़े आदमी हैं आप, पर इतने भी क्या बड़े कि हम जैसे लोग दिखाई ही नहीं देते। श्यामली के दिल में एक सहरन दौड़ गई। औरत दरवाज़ा पूरा खोलकर एक कदम बाहर आई, जैसे अपने दर्द को घर की दहलीज में कैद नहीं रखना चाहती थी। उसने हाथ कमर पर रखा, गुस्सा अब और साफ था। 10 साल, पूरे 10 साल मेरे पति ने आपके यहाँ काम किया, सुबह से रात तक, गर्मी, बारिश, बुखार, कुछ नहीं देखा। उसकी आवाज़ कांपने लगी, पर उसने खुद को संभाला। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन आप बच गए, मेरे पति ने दम तोड़ दिया। श्यामली ने अनजाने में अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। ये कहानी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। औरत की आंखें लाल हो गईं, लेकिन आंसू बाहर नहीं आए, जैसे रोना अब उसके लिए एक बर्बाद होती लक्जरी हो। उसके बाद एक भी आदमी नहीं आया आपके घर से, ना आप, ना आपका कुत्ता, ना आपका कोई नौकर। किसी ने नहीं पूछा कि आनंदी कैसे है, कैसे घर चला रही है। अब श्यामली को पता चला, ये आनंदी है, ड्राइवर की पत्नी, वो ड्राइवर जो विश्वनाथ के साथ था, जिसकी मौत हुई थी। और शायद ये पहला मौका था जब किसी ने विश्वनाथ को इस लहजे में बात की थी। आनंदी ने बिना रुके कहा, मेरे पति की लाश मैंने अकेले उठाई, अकेले शमशान लेकर गई, अकेले लकड़ी खरीदी। उसने अपनी ठुड्डी कस ली, जैसे खुद को टूटने से रोक रही हो। आप बड़े लोग हैं ना, आपके घर में तो 10-10 आदमी होते होंगे काम करने के, पर किसी ने नहीं सोचा कि एक औरत अकेली है, उसका बच्चा है, खाना कैसे बनेगा, घाट का पैसा कहाँ से आएगा। श्यामली की रूह कांप गई। उसने अनजाने में विश्वनाथ को देखा। विश्वनाथ की आंखें नीचे थीं, हाथ हल्का कांप रहा था, शायद सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि उन अनकहे शब्दों के वजन से। आनंदी का गुस्सा बढ़ता गया। मेरे पति ने अपनी जान दी आपके लिए, इतना तो मानती हूँ, नहीं बचते आप अगर वो स्टीयरिंग ना पकड़ते। श्यामली ने पहली बार विश्वनाथ की ओर देखा, ये बात उसने भी नहीं सुनी थी। आनंदी ने आगे कहा, मगर उसके बाद मेरे दरवाजे पर एक साया तक नहीं आया, आप भी नहीं। अब उसकी आवाज़ टूट रही थी। आपको पता भी है कि मैं और मेरा बेटा कैसे जी रहे हैं? विश्वनाथ ने पहली बार धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ भारी थी, धीमी और दर्द से भरी। आनंदी, मैं? आनंदी ने हाथ उठाकर रोक दिया, नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। श्यामली को लगा जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। ये औरत, आनंदी, दर्द से भरी थी, टूटी भी थी, पर उसके गुस्से में सच्चाई थी। 10 साल की नौकरी, और आखिरी दिन आपके परिवार में से किसी को फर्क नहीं पड़ा, एक फोन तक नहीं आया। विश्वनाथ ने आंखें बंद कर ली। आनंदी ने धीरे से कहा, मेरे पति को आपकी बहुत इज्जत थी, वो कहते थे साहब अच्छे आदमी हैं, पर आप, आपसे ये उम्मीद थी। एक लंबी चुप्पी, बहुत भारी। श्यामली ने पहली बार विश्वनाथ के चेहरे पर वो दर्द देखा जो किसी को भी हिला दे। आनंदी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ अब चीख नहीं थी, टूटता हुआ सच थी। मेरा बेटा स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, किराया देना मुश्किल है, सिलाई करूं या घर चलाऊं, बच्चे को खिलाऊं या दवाई लूं। अब श्यामली का दिल भर आया, वो एक कदम आगे बढ़कर बोली, सुनिए मैं। आनंदी ने उसे काट दिया, आप मत बोलिए, आप नहीं जानती। श्यामली रुक गई, उसने नीचे देखा। आनंदी गलत नहीं थी। आनंदी ने आखिरी बात सबसे दबे लेकिन सबसे चुपते स्वर में कही, साहब आप इतने बड़े हो गए कि हम जैसे लोग दिखना ही बंद हो गए आपको, आप बच गए ये अच्छी बात है, पर जो मर गया उसका क्या? श्यामली ने विश्वनाथ का चेहरा देखा, वो जैसे अंदर से टूट चुका था। कुछ क्षण तक विश्वनाथ कुछ नहीं बोल सका, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो आनंदी। ये शब्द उनके दिल के सबसे गहरे हिस्से से निकले थे। आनंदी ने सुना लेकिन चेहरा नहीं बदला। दर्द बहुत पुराना था, माफी बहुत देर से आई थी। विश्वनाथ ने आगे कहा, मैं बहुत कुछ जानता ही नहीं था, बहुत कुछ छूट गया। आज सब ठीक करने आया हूं। आनंदी ने ठंडे स्वर में कहा, देखते हैं। वो पीछे हट गई और धीमे से बोली, अंदर आइए। श्यामली और विश्वनाथ घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे की उस दहलीज के ऊपर से जहां वर्षों का दर्द जमा था, घर के अंदर धीमी रोशनी, गहरा दर्द। अंदर कदम रखते ही श्यामली का दिल और भारी हो गया। कम कमरे, कम सामान, हर चीज में तंगी साफ दिख रही थी। विश्वनाथ धीमे से उसके थोड़ा पास आया, आवाज बहुत हल्की, जैसे डर हो कि कोई सुन ना ले। श्यामली, तुम जरा उससे बात करना। श्यामली चौंकी, मैं? लेकिन मैं क्या कहूंगी, वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगी। विश्वनाथ ने लंबी सांस ली, उसके चेहरे पर साफ दर्द था। शायद एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। तुम उससे कहो कि हम मदद के लिए आए हैं, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। श्यामली ने होंठ फींचे, लेकिन मैं कैसे? अभी उसने जैसा बोला वो मेरी तो सुनेगी ही नहीं। विश्वनाथ उसकी आंखों में देखता है, धीरे भरोसे से, सुनेगी क्योंकि तुम बोलोगी और तुम झूठ नहीं बोलती। श्यामली की पलकों में हल्की घबराहट आई, जैसे किसी ने अनजाने में उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी हो। मुझे तुम पर भरोसा है श्यामली, विश्वनाथ की आवाज टूटती हुई लगी। अगर कोई उसे मना सकता है तो तुम। श्यामली चुप रही, दिल जोर से धड़क रहा था, वो भी डक रही थी, लेकिन उतना है विश्वनाथ के टूटे चेहरे को देखकर उसका डर पीछे हट रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और यही कोशिश अब कहानी की दिशा बदलने वाली थी।